तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले। शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए। भागीरथ बन ज्ञान अमृत की, भागीरथ बन ज्ञान अमृत की। गंगधार बहा कर चले गए, तुम शांति दूत बन पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया जो आपके तन में शिव आए। नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए। प्यारी मुरली से दुनिया को, प्यारी मुरली से सद्ज्ञान सुना कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का सन्मार्ग दिखाते हो। अब भी हो पाल रहे हमको, नित अमृत वेले उठाते हो। तुम भले ही इस नश्वर जग से, तुम भले ही इस नश्वर जग से साकार रूप में चले। शांति दूत बन आए, शांति का
ओम शांति। बेगरी पाठ जब शुरू हुआ, बाबा ने बहुत दादियों को प्रेरणा दी कि ज्ञान गंगा बन करके अलग अलग जगह पर जाकर के बाबा का संदेश दे। और दादियां गई और अलग अलग सेंटर्स खुले, बहुत सारे सेंटर्स खुले, और वहां भाई बहन ने आना शुरू किया और पक्का होते गए। बाबा का ज्ञान सुनने लगे, बाबा के जो भी बातें हैं वो सब धारण करना शुरू किया। फिर करते करते उन लोगों के अंदर ये जिज्ञासा पैदा होना शुरू किया कि हम भी मधुबन जाएं, माउंट आबू जाए, मधुबन में जाकर के बाबा से मिले। अब जो लोग ईश्वरीय सेवा केंद्र पर नित्य ज्ञान लेते तथा योग अभ्यास करते, उनके जीवन में अलौकिक सुख का अनुभव होता था। तो उनके मन में उमंग पैदा होता था कि हम आत्मा के इस पिता परमात्मा शिव से मिले। उनके मन में विचार उठता था कि जब इन ब्रह्म कुमारी बहनों का जीवन इतना पवित्र और शांत संपन्न है, तो स्वयं ब्रह्मा बाबा का जीवन अत्यंत निर्मल दिव्य गुण संपन्न होगा ही। फिर ये बहने जो कहती है कि ब्रह्मा बाबा के साधारण और वृद्ध मानवीय तन में सभी आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव बाबा आते हैं और वही ब्रह्मा बाबा के मुख अरविंद से ज्ञान देते हैं, और ये जो अद्भुत दृश्य हमें भी देखना है, हम भी बाबा से मिलना चाहते हैं, ये इच्छा जागृत होती थी। संसार में इससे अधिक महत्वपूर्ण और अद्भुत क्या हो सकता है, कोई बात और है ही नहीं है। अतः वे जिज्ञासु ब्रह्म कुमारी बहनों से कहते, बहन जी अब हम अधिक इंतजार नहीं कर सकते, हम इस ज्ञान को समझने में ही इतना समय लगा दिया है, हमें भी अभी जाना है मधुबन बाबा से मिलने के लिए। लेकिन बाबा के नियम तो नियम थे, तो सभी को तो लेके नहीं आ सकते थे मधुबन में। तो फिर बहने या दादियां उन सभी को बताती नियम क्या है, पवित्रता को धारण करने की जरूरत है, खान पान की शुद्धि होना जरूरी है और अलौकिक परिवर्तन करना जरूरी है, अपनी दृष्टि व वृत्ति को शुद्ध करना है, और जिसे ईश्वरीय ज्ञान में संपूर्ण निश्चय है वही आत्माएं मधुबन जा सकती थी। और जिन आत्माओं के पिता बाबा में पूरा पहचान, बाबा का पहचान है, बाबा में निश्चय है, तो वही आत्माएं आ सकती थी। तो वो आत्माएं वो पूरी धारणा करके नियमों पर चल करके फिर बाद में जब मधुबन आते थे तो उनका अनुभव क्या होता था। अपने अपने शहरों से जिज्ञासु रेलगाड़ी में सफर करने के लिए जब बैठते थे तो अजीब सा उनको महसूस होता था कि हम सभी अपने बचपन के दिन भी याद कर सकते हैं, जब हम पहली बार मधुबन के लिए निकले थे तो हमारे अंदर भी इतना उतावलापन, इतना उमंग उत्साह होता था। तब आप सोचिए कि ब्रह्मा बाबा जब थे, तब जब ये जिज्ञासु आते थे, भाई बहने आते थे, उनके अंदर कितने सारे उत्कंठा हो सकती थी। उनके दिल में, उनके बुद्धि में बस यही विचार होता था कि हम ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तथा सरस्वती मैया से मिलने जा रहे हैं। जैसे जैसे स्टेशन गुजरते जाते उनके मन की उत्कंठा बढ़ती जाती। अबू रोड जाकर जब वे उतरते तो उनके सामने से पहाड़ दिखते और वे सोचते कि बस अब तो ऊपर बाबा हमारे इंतजार कर रहे होंगे। हम भी जब आए थे मधुबन पहली बार, जब मधुबन अरावली पर्वत देखे तो वो खींच, हाँ हम घर आ गए हैं, ऐसे महसूस हर ब्राह्मण वत्स को ये महसूस होता है। ना जाने उनके मन में एक अपनापन क्यों महसूस होता था और मिलने से पहले ही ये भाव क्यों उमड़ पड़ता था कि हम अपने सच्चे बाप के पास अथवा अपने घर जा रहे हैं। उन्हें एक अजीब से आकर्षण का अनुभव होता। आखिर वे ऊपर अबू पर्वत पर यज्ञ में जा पहुंचते। बाबा कहते, मेरे सिकलदे बच्चे आओ आओ, कल्प से बिछड़े हुए बच्चे आन मिले हैं, देखना इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। माया ने इन्हें जन्म जन्मांतर दुखी किया है और थका दिया है, अब ये बाप के घर आए हैं आत्मा की थकावट दूर करने, इसीलिए इनको स्थूल रीति से और सूक्ष्म रीति से सभी सुविधाएं मिले ताकि आत्मा की और शरीर की थकावट दोनों थकावट मिट जाए। वो शुभ घड़ी भी आ पहुंचती जब उन जिज्ञासु आत्माओं को ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने ले ले जाया जाता था और सभी यज्ञवत्स भी आसपास बैठे देख रहे होते थे कि ये हमारे नए भाई बहन आए हैं। बाबा और मम्मा के सामने बैठे हुए वे जिज्ञासु अपने मन में बड़े प्रसन्न होते। यहाँ आने से पहले तो उनके मन में ये प्रश्न अथवा उत्सुकता बनी रहती थी कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में कैसे आते होंगे, उनकी प्रवेशता को हम कैसे जान पाएंगे, शिव बाबा से हमारा मिलन कैसा होगा। परंतु अब जब वे आकर आत्मनिश्चय होकर बैठते और बाप दादा की ओर निहारते तो वे उनकी नजर से निहाल हो जाते थे। बाप दादा जब दृष्टि देते तो नजर से निहाल हो जाते थे। ब्रह्मा बाबा के नेत्रों रूपी खिड़कियों से शिव बाबा आत्माओं से मिलते। बाबा बच्चे, मीठे बच्चे कहकर पुकारते और पुचकारते। परंतु ये शब्द उच्चारण होने से पहले ही कहीं जिज्ञासु तो उस चुंबक के पास पहुंच जाते, जैसे खींचे चले जाते बाबा के पास। बाबा और मम्मा का तन क्या था? इस पृथ्वी पर सुख धाम और शांति धाम था। उस पारसनाथ के स्पर्श से ऐसा महसूस होता था कि पवित्रता की धारणा का प्रभाव उनकी प्रकृति पर भी खूब पड़ा है। ब्रह्मा बाबा के तन और मम्मा का तन जो बहुत ही शीतल, उनको देख करके बहुत ही अलौकिक अनुभव होता था सभी को। कहावत भी है, संत बड़े परमार्थी शीतल, जिनके अंग औरों को शीतल करे दे दे अपना रंग। जो संत शीतल होते हैं तो औरों को भी शीतल कर देते हैं और अपना जो रंग है दूसरों पर भी वो अलौकिक रंग डालते हैं। सचमुच उन दोनों के तन में भी ऐसे शीतलता थी कि जिससे आत्मा की जन्म जन्मांतर की थकावट दूर हो जाती थी। परंतु उस ईश्वरीय गोद का सौभाग्य उन्हीं को मिल सकता था जो आजीवन ब्रह्मचर्य की धारणा की तथा योग अभ्यास की प्रतिज्ञा लिए हुए होते थे। वास्तव में उस मिलन में देह का भान होता ही नहीं था। जब बाबा के गोद में जाते थे, बाबा उनको बाकी पहनते थे, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई देह है, तो बहुत ही अलौकिक महसूस करते थे सभी। अपने देह की भी सुध-बुध ना होती थी। अशरीरी अवस्था क्या होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसा होता है, इसका जो अवर्णनीय अनुभव उन सुखद क्षणों में होता था। उन क्षणों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन शब्द नहीं दे सकते थे। ऐसे उच्च अनुभव, ऐसा श्रेष्ठ अलौकिक अनुभव लोग करते थे। उससे आत्मा गदगद होता हो जाती थी। तब मन में इस संसार का कोई संकल्प या आभास नहीं होता था और आसपास बैठे यज्ञ वत्सों की उपस्थिति का भी पता नहीं रहता था। आत्मा का परमपिता परमात्मा से वो मिलन ऐसा होता था कि तब बीच में किसी दूसरे की याद, किसी भी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प, मन में कोई भी इच्छा व तृष्णा नहीं होती थी, बल्कि एक आत्मा और दूसरा पिता परमात्मा, दोनों बिंदु आपस में ऐसे स्नेह और चाव से मिलते थे और परमात्मा की ओर आत्मा का ऐसा दिव्य आकर्षण रहता था कि कैसे उसकी व्याख्या करें। तो ऐसे चुंबक की तरह ऐसे खींच होती थी, ऐसा अलौकिक अनुभव होता था। एक सेकंड में यह स्थिति होती थी कि जिसमें ना जमीन का भान ना आसमान का पता रहता था और आत्मा सर्वभावेन परमपिता परमात्मा की होकर अद्भुत आनंद की अनुभूति करती थी। प्रेम में, शांति में, शक्ति में, रस में, उसके रस में तन्मय हुआ करती थी। फिर स्थिति थोड़ी थोड़ी करके इस ऊंचाई से नीचे की ओर आ जाती थी, परंतु उस अनुभव की याद में जिज्ञासु खोया रहता था। उस अनुभव को पाने की उसे फिर तीव्र उत्कंठा रहती थी, परंतु अब अन्य भाई बहनों ने मिलना है, मन में थोड़ा यह संकल्प उठने के कारण ये स्वयं को जैसे तैसे कंट्रोल करते थे। और फिर बाबा मुरली क्लास में भी, सुबह के टाइम पे मुरली क्लास में भी सबसे मिलते थे। प्रातः ज्ञान मुरली सुनते समय भी जिज्ञासुओं को एक विचित्र प्रकार का अनुभव होता था। वे देखते थे कि वो मुरली सर्व आत्माओं के प्रति ही चलाई गई है। वो सभी धर्मों, सभी देशों, सभी वर्गों के लोगों के लिए है। उसमें तीनों कालों तथा तीनों लोकों का ज्ञान समाया हुआ है। बाबा बोलते भी ऐसे हैं जैसे कि वो हमारा कल्याण करके ही छोड़ना है। उस अधिकार से बाबा बोलते थे हमें पवित्र बनाने का कर्तव्य करके ही रहना है। वो हमें बच्चे बच्चे भी ऐसे स्वाभाविक तरीके से तथा स्नेह से कहते थे। वो हमें पुचकारना और दुलारना, ये ऐसे जैसे कि उनका प्यार जैसे उसमें बह जाते थे स्वाभाविक रूप से। बाबा का प्यार का सागर का जो गुण है उसमें बह जाते थे। सभी का कल्याण करना और सभी को पतित से पावन बनाना हो, ये कर्तव्य बाबा का था। कदम कदम पर वो हमारे जीवन की जवाबदारी ले लेते हैं। वे बाबा के पास बैठकर बाबा को अपने किए विकर्मों का चिट्ठा बताते। जो बच्चे अपने विकर्मों का चिट्ठा जो बताते तो भी बाबा की दृष्टि उनके लिए घृणा की दृष्टि ना बनती, बल्कि उनके उन संस्कारों से निकालने का ही वे सदा पुरुषार्थ कराते। इतना पावरफुल दृष्टि दे करके उस आत्मा को उस संस्कार से मुक्त करने के पुरुषार्थ कराते। उनका प्यार पहले ही की तरह ही बना रहता। बाबा की बातों से पता चलता कि वो निर्वैर, निर्भय, अकाल मूरत और अव्यक्त मूरत है। उनके हाव भाव, उनकी वाणी, उनका ओज, उनका प्यार ही बहुत ही न्यारा, बहुत ही प्यारा था। जिज्ञासु सोचते थे कि बाबा से हम ये बात पूछेंगे अथवा हमारे मन में ये संकल्प उठ रहा है, ये प्रश्न पूछना है, उनका समाधान हमें बाबा से लेने हैं। परंतु वे उसी दिन या अगले ही दिन देखते कि बाबा ने जो मुरली चलाई है उसमें उन्हीं प्रश्नों के ऊपर प्रकाश डालते, मानो कि वो मन को जान लेते थे। ब्रह्मा बाबा कहते, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, परंतु बच्चे जो संकल्प करते हैं वे शिव बाबा के पास पहुंच जाता है और वे मेरे तन में आकर यदि उचित समझते हैं तो मुरली में उस विषय पर समझाते हैं। इस प्रकार एक निस्वार्थ और अलौकिक प्यार, एक दिव्य प्रभाव, एक विचित्र आकर्षण तथा वातावरण में शांति, पवित्रता और आनंद की लहरों को अनुभव करके और मुरली में विशेषताओं की ओर ध्यान देकर बहुत से जिज्ञासियों को प्रैक्टिकल रीति से निश्चय हो जाता था कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें पढ़ा रहे हैं। और मुरली सुनाने के बाद बाबा फिर कर्मणा सेवा में लग जाते थे। बाबा आकर यज्ञ वत्सों के साथ ब्रह्मा भोजन के लिए सब्जी काटने बैठ जाते थे, जैसे स्थूल कार्यों में जुट जाते थे। सभी यज्ञ वत्स कहते, बाबा ये कार्य हम बच्चों का है, ये स्थूल काम हमें करने दीजिए, आपको ये करते हुए देख करके हमें अच्छा नहीं लगता है। फिर बाबा कहते, मैं भी शिव बाबा का बच्चा हूँ, हमारा तो कर्म योग है। तो ब्रह्मा बाबा हर चीज करके दिखाया सभी बच्चों को, यदि हम स्थूल कार्य न करें तो ये कर्म योग कैसे सिद्ध होगा। बच्ची, यज्ञ की सेवा सर्वोत्तम सेवा है। तो इतना बड़ा बाबा एक जगह पर नहीं बैठते थे, इतना निर्माण हो करके सब कार्य बाबा करते थे। इस प्रकार का कार्य करते हुए भी शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। मना कर्म करते हुए भी कैसे शिव बाबा को याद करे वो बाबा सिखाते थे, ताकि स्थिति एकरस और योग निरंतर हो जाए। इस प्रकार की युक्तियां देकर बाबा अपनी बात मनवा लेते थे। फिर सभी बच्चे नाश्ता करते, बाबा भी ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर आने वाले नए बच्चों के पत्रों का उत्तर देने के लिए उन्हें पत्र लिखते। वे पत्र क्या होते, वे अमृत के प्याले अथवा संजीवनी बूटी की तरह काम करते। तो बाबा के लाल अक्षरों का जो पत्र है वो देख करके ही बच्चे गदगद हो जाते थे। उन्हें पढ़ने से आत्मा को एक रूहानी नशा चढ़ जाता, उनमें इतना माधुर्य, इतना स्नेह, इतनी कल्याणकारी बातें, इतना ज्ञान छलकता था कि उन्हें पढ़ पढ़कर आत्मा गदगद हो जाती थी। स्वयं भगवान का पत्र आया हुआ हो और वो देख करके कितना ना खुशी हर आत्मा को होती होगी। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि आत्मा को परमात्मा से पत्र भी आ सकती है। इस विषय में एक गीत भी है कि भगवान तुझे पत्र लिखता अगर तेरा पता मालूम होता। भगवान को पत्र लिखते अगर तुम्हारा पता होता, परंतु अब तो उसने अपना पता बता दिया था। प्रतिदिन न जाने कितना पत्र अभू में इस पते पर आ जाते थे। कौन सा पता था, कौन सा एड्रेस था, सेवा में परमपिता परमात्मा शिव मार्फत प्रजापिता ब्रह्मा, ना केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रिज कोटी अभू पर्वत राजस्थान, ये पता था भगवान का। तो अभू डाकखाने के कर्मचारी भी ये पता पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाते थे। इस बात को तो अनुभवी ही जान सकते हैं। दूसरे लोगों के लिए तो ये एक आश्चर्यजनक की बात होगी। बाबा के पत्रों के इन सुनहरी अक्षरों के लिए, उन मधुर शब्दों के लिए जिज्ञासु लोग तड़पते रहते थे। जैसे बाबा का पत्र आज आएगा, अभी आएगा, तो ऐसे इंतजार करते थे और तड़पते थे। सेवा केंद्र पर पत्र आते ही चारों ओर सभी ऐसे इकट्ठे हो जाते थे, न जाने उन्हें उस पत्र को सुनने से क्या मिलेगा। हर एक को नाम से याद किया करते थे बाबा, हर एक को सिकिलदे बच्चे, नूरे रतन, मीठे 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 बच्चे ऐसे संबोधित करते थे। ऐसे शब्दों से बाबा लिखते थे, उसको देख करके बच्चे दिल में लगा करके रखते थे बाबा के उन अनमोल पत्रों को, क्योंकि ना केवल वो शब्द थे लेकिन शब्दों में समाया हुआ बाबा का अथाह स्नेह और शक्ति उसमें समाया हुआ होता था। दिन में कई बार योग अभ्यास अथवा ईश्वरीय याद रूपी यात्रा की क्लास होती थी। सभी उस अभ्यास से अपनी अवस्था को अव्यक्त बनाते और आत्मा में लाइट तथा माइट भरते, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का पुरुषार्थ करते। तो दिन भर में कोई ना कोई क्लासेस कि ना किसी दादी से मिलना या कोई ऐसे क्लासेस होते थे, और बाबा भी बार बार मिलते थे। और बाबा उस समय कोई ऑफिशियल शिव बाबा ऑफिशियल टाइम पे नहीं आते थे, कभी 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 भी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आ जाते थे। बाबा अगर सब्जी काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, शिव बाबा का अवतरण हो जाता था और बात करते फिर निकल जाते थे। तो ऐसे ऑफिशियल टाइम नहीं होता था ना उस टाइम पे, तो ऐसे चलते फिरते भी शिव बाबा से मुलाकात हो जाती थी। तो जब भी ब्रह्मा बाबा से मिलते थे ऐसा नहीं लगता था बच्चों को कि शिव बाबा नहीं है, तो हमेशा लगता था कि बाप दादा से मिल रहे हैं। और रात्रि को भी क्लास होता था। रात्रि की क्लास में बाबा और मम्मा जब सभी के सामने आकर बैठते तो वो दृश्य भी देखने जैसा था। दोनों दिव्य मूरत तथा दोनों के मुखमंडल पर पवित्रता की अनोखी झलक और अद्भुत तेज होता था। दोनों की भ्रुकुटी में आत्मा का उजाला, दोनों मधुर मुस्कान से स्नेह भरे नयनों से निहारते। पृथ्वी पर अजीब चमत्कार हो रहा था और करोड़ों मनुष्यों को इसका पता भी नहीं था। ठीक ही तो कहा गया है कि जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि में आकर सौभाग्य बांटा तो बहुत से लोग वहां देर से पहुंचे और बहुत से तो अज्ञान निंद्रा में सोए रहते थे। धन्य है वे आंखें जिन्होंने सभी आत्माओं के प्रजापिता ब्रह्मा को तथा जगदम्बा सरस्वती को अपने सामने बैठे हुए देखा और ज्ञान चक्षु से ब्रह्मा बाप में पधारे हुए शिव बाबा को भी देखा। धन्य है वो कान जिन्होंने इनके मुखारविंद से आत्मा को आलोकित, आनंदित और निर्मल करने वाले उन मधुर महावाक्यों को सुना। धन्य है वो मानव शरीरधारी जिन्होंने उन माता पिता की अलौकिक धर्म गोद का दिव्य सुख लूटा। बाबा के गोद में जाकर के जो सुख उन्होंने लूटा वो बहुत ही अनोखा था। धन्य है वे जिन्होंने उनके पवित्र हाथों से टोली पाई है। क्या वो दृश्य सदा नहीं रह सकता? वे दोनों दिव्य मूर्तियां जब क्लास में आती तो उनके आने का ढंग, बैठने की रीति, उनकी प्रीति, उनके निहारने की विधि बहुत न्यारी होती थी। पहले मम्मा क्लास में आकर सभी के हालचाल पूछते और थोड़ा क्लास कराते, फिर बाबा ब्रह्मा बाबा आते, ब्रह्मा बाबा हॉल में आते ही मम्मा चुप हो जाते थे। तो भले मम्मा आदि देवी है, सरस्वती है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा के प्रति इतना, इतनी इज्जत, इतना रेस्पेक्ट कि ब्रह्मा बाबा आते ही मम्मा चुप हो जाते। कि ब्रह्मा बाबा बोलते, मम्मा आप जो बता रहे थे उसको तो पूरा तो करिए, लेकिन मम्मा कुछ भी नहीं बोलते, उतना रेस्पेक्ट रखते थे ब्रह्मा बाबा की मम्मा। तो बाबा आते तो सभी को दृष्टि से निहारते, उनका बैठना उठना सभी को बहुत ही मधुर और अलौकिक लगता। क्लास में खुशी की लहर के साथ साथ सन्नाटा छा जाता था। अपना स्थान ग्रहण करके बच्चों की ओर देखते हुए वो कहते, मम्मा सभी से खुश कैरिफित पूछी, सभी से साल्वेशन पूछा, क्या चाहिए सबको। तो ऐसे चिटचाट करते थे सभी से, और ये भी पूछते, आज सारा दिन कुछ भूल चूक तो नहीं हुई है। तो और बहुत प्यार से चिटचाट करते, क्लास कराते थे बाबा। और फिर बाद में बहुत सुंदर क्लास करा करके फिर लास्ट में फिर योग में उड़ा देते थे बाबा। ऐसे बोलते बोलते सभी वत्सों की आत्मा शिव बाबा की याद में एक टिक हो जाती थी। ऐसा मालूम होता कि शिव बाबा बहुत ही लाइट और माइट दे रहे हैं। जी करता है कि बस ऐसे ही बैठे रहें, ये सुख लूटते ही रहे। इस प्रकार दिन गुजरते पता ही नहीं चलता। आखिर जिज्ञासुओं के विदा होने की घड़ी भी आ जाती। उन दिनों में कोई कोई 6 दिन 7 दिन एक हफ्ता रह जाते थे मधुबन में, फिर जाने का समय भी आ जाता था। बाबा मम्मा हॉल में आकर बैठते विदाई के समय, जाने वाले सारी पार्टी उनके सामने आकर के बैठती। सभी एक एक करके बाबा और मम्मा से मिलते, बाबा उनकी निजी धारणाओं को ऊंचा उठाने के लिए सभी के कानों में, कभी कानों में और कभी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा भी देते, और सभी के मुख में टोली भी देते, टोली मुख में प्यार से टोली देते थे। फिर पीठ थप थप थपा कर कहते, अच्छा बच्चा जाते हो, तब सभी के नेत्र भीग जाते थे। बड़ी आयु वाले जिज्ञासुओं की तो क्या कहे, छोटे छोटे बच्चों की भी बाबा से ऐसी प्रीत जुड़ जाती थी कि जब वापस लौटने का समय आता तो वो जाने से इनकार कर देते थे और इधर उधर कहीं छिप जाते थे ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए और गाड़ी का समय निकल जाए। जब उन्हें ढूंढ के लाया जाता था, वापस घर चलने के लिए कहा जाता था, तो वे बच्चे बाबा का हाथ पकड़ लेते और कहते, बाबा हम तो नहीं जाएंगे। तो बाबा उन्हें प्यार से कहते, मीठे बच्चे तुमको तो जाना है, फिर वापस आना है। बाबा तुम्हें अभी सर्विस पर भेज रहे हैं, तुम जाकर दूसरों दूसरों को बाबा का परिचय देना, ऐसे देवी चलन से चलना कि सभी कहें ये तो सचमुच ईश्वर का बच्चा है। फिर जल्दी जल्दी तुम पंडा बनकर वापस आ जाना। इस प्रकार बच्चे बाबा की ये उत्साहवर्धक बातें सुनकर उनका चेहरा खिल उठता था। और फिर बाबा को, बाबा से बहुत प्यार से दृष्टि लेते हुए आंखों से प्रेम की मोती बरस पड़ते। फिर वे बाबा की गोद में बैठ जाते और अपने गीले नयनों को हाथ और कलाई से छिपा लेते। फिर सभी जाने के लिए तैयार होते। उधर गीत बज रहा होता था कि भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो हर एक बाबा के बच्चे जो पहले बार बाबा के घर आए, और जब जाने का समय आता था हर कोई रो पड़ता था, हर कोई के आंखों में वो आंसू आते थे, जाने का दिल ही नहीं होता था। सभी के नेत्रों से प्यार की बूंदें टपक पड़ती। जाते जाते वे पीछे निहारते रहते, बाबा और मम्मा टाटा करते रहते, रुमाल हिला हिला कर सभी को विदाई देते। कई बार तो वे यज्ञ भवन के गेट तक जाकर बाबा छोड़ करके आते। फिर सारा सारे रास्ता जिज्ञासुओं को शिव बाबा की और यज्ञवत्सों की याद आती रहती थी। वे मन ही मन में सोचते कि पता नहीं हम वहां से वापस क्यों चले आए। अब उनका स्नेह बाप दादा से और यज्ञ माता से जुड़ जाता और उन्हें बाबा जो शिक्षा देते उसी स्नेह में वे उसे धारण करते और जीवन को उच्च बनाने तथा दूसरों की भी ईश्वरीय सेवा करने में तत्पर हो जाते। इस प्रकार जिज्ञासुओं का आभू में आना जाना लगा रहता था। नए नए सेवा केंद्र भी खुलते जाते और ईश्वरीय सेवा कार्य निरंतर वृद्धि को पाता जाता। तो ऐसे इतना प्यार बाबा हर एक आत्मा के ऊपर लुटाते थे। ये नहीं देखते थे ये साधारण आत्माएं हैं या फिर एक श्रेष्ठ आत्मा। हर आत्मा के प्रति बाबा का अथाह प्यार होता था। एक बार ऐसे ही जब जाने का जो ग्रुप था वो जा रहा था, करीब 10-12 लोग थे, विदाई ले रहे थे, बाबा से छुट्टी ले रहे थे। बाबा दृष्टि देते देते अचानक याद आया, अचानक लगा बाबा को इन बच्चों को मुझे हलवा खिलाना है। जा रहे हैं आधे घंटे में उनको निकलना है और बाबा को संकल्प आया इन बच्चों को हलवा खिलाना है। तो बाबा ने कहा कि मम्मा इन बच्चों को हलवा नहीं खिलाएंगे आप? तो मम्मा ने कहा कि हाँ बाबा, जी बाबा, मम्मा को पता है इन बच्चों को अभी निकलना है और हलवा बनाने में तो लगेगा अभी आधा पौना घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि 15-20 लोगों के लिए वो हलवा बनाना था और उन दिनों में गैस भी नहीं होता था, चूल्हा होता था, तो चूल्हे में बनाना मुश्किल, मतलब टाइम लगता था। फिर भी बाबा ने, मम्मा ने कहा कि जी बाबा बना देंगे। तो चुपचाप मम्मा वहां से निकली और फिर किचन में गए और हलवा बनाना शुरू किया शांति से। और फिर एक दादी वहां आए और दादी ने कहा कि मम्मा वो तो निकल रहे हैं, अभी हलवा आप बनाएंगे भी, वो उनको तो नहीं मिलेगा। फिर भी मम्मा मुस्कुरा करके फिर हलवा बनाने में लग गए। कि धीरे धीरे जब हलवा बना, बनाने के बाद डब्बी में डाला और बाबा को दिया, तो तब तक तो वो जो ग्रुप था वो निकल गया था। फिर बाबा ने एक भाई को बुलाया साइकिल पर, वो दिया कि चलो जाकर के रेलवे स्टेशन पर दे के आओ। तो फिर वो भाई वो फिर अबू रोड तक, रेलवे स्टेशन तक साइकिल पर वो हलवे का डब्बा लेकर के स्टेशन पर पहुंचे और वहां ट्रेन लेट था, आधा घंटा लेट था, तो उन बच्चों को वो हलवा मिल गया। तो बाबा किन आत्माओं को, किन बच्चों को कौन सी बात, तो किस बात से संतुष्ट करना है, किसको क्या पता, है ना। बाबा की बातें निराली और बाबा की जो पर्सनालिटी थी बहुत ही चुंबकीय था। तो ऐसे बाबा हमारे थे, ब्रह्मा बाबा और मीठी मम्मा, और यज्ञ वत्सों को इतने प्यार से सभी ने सींचा और शक्ति भरी, है ना। उस बाबा जैसे हमें भी बनना है। ओम शांति।